તારીખ 12/1/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 472 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 23.
जिसे अज्ञान की तरफ से नहीं हुआ हो उसको समझाना कोई बात परमार्थ की समझ में आ जाती है, सूक्ष्म विशेष को कारण से समझ में आ जाती है, ऐसी बात है। लेकिन जो सत्पुरुष का विनेशन अज्ञान की तरह करके करता है उसको उसकी बात समझ में आ जाती है, परमार्थ समझ में आ जाती है। स्पष्ट लिखी हो तो भी समझ में नहीं आया इसका क्या कारण। बुद्धि तो है, बुद्धि है फिर भी परमार्थ पारमार्थिक प्रयोजन पर लक्ष्य जाना ध्यान जाना इसके लिए योग्यता चाहिए। ऐसी योग्यता आने वाले को किसी को होती है किसी को नहीं होती है, बराबर सभी को नहीं होती है, बराबर किसी को होती है किसी को नहीं होती है। किसी को नहीं होती है उसका पता है कैसा है, उसका प्रयोजन तो और जगह होने से उसका दृष्टिकोण वहां काम करता है तो इधर नहीं काम करता है, बराबर प्रयोजन दो तरह का होता है, एक आत्मकल्याण रूप मोक्ष का और एक सांसारिक। इसको छोड़ो तो सब सांसारिक है, एक प्रयोजन को छोड़ने से सभी प्रयोजन संसार के खाते में जाता है। तो जिसका ये प्रयोजन हुआ तो उस विषय जितनी पारमार्थिक बातें हैं उनको समझ में आएगी और वहां सिद्धि रहेगा होगा। जिसको प्रयोजन ही अलग है वहां उसका बुद्धि उसका लक्ष्य वही बराबर काम करेगा और वो अज्ञान के दृष्टि कहीं न कहीं अपनी मनमानी करने अलग जाएगा। इसलिए उनको स्पष्ट बताया हो तो भी उनको समझ में नहीं आता, मेरे काम की चीज बताएगी ऐसा समझ में उसको चाहती नहीं। आत्मलक्ष्य वाले को चाहती है इसको चाहती
मन ज्ञानी में हृदय में चाहिए क्या
ज्ञानी में रहता से हम तो मुमुक्ष में बात है जो मुमुक्ष है ज्ञानी ने मैंने स्पष्टपणे लखेली है ने वाचवामां आवे तो पण एने एनो परमार्थ न समझाय
लायक है એનો વર્મ જે છે તો એને સમજાય નહીં કારણ કે જ્ઞાની ના લાગે
વર્મ તો ના શું પણ આજ્ઞાનથી પણ સત્સંગ ઉપાય છે એને સમજાય શું આપ્યું? અજ્ઞાતિક પણ એને સત્સંગ ઉપાસન છે એને એને સમજાય. પાણી તો વાણું છે ને, સ્પષ્ટ તો સ્પષ્ટ છે. અજ્ઞાતિક પણ સત્સંગ ઉપાસો છે એને તો સમજાય છે, અને અજ્ઞાતિક પણ સત્સંગ નથી ઉપાસો એને નથી સમજાય. એટલે ભાઈ પણ તફાવત બે વચ્ચે નો લેવો છે, મોક્ષની યોગ્યતાનો તફાવત લેવો છે.
કોઈ જેવું દર્શન કરી સેવા આવ્યો એને પ્રત્યક્ષ યોગમાં પણ આવે, અને અત્યારે સત્કૃષ્ણ માર્ગદર્શન પણ મળતું હોય, અને પછી યોગ છૂટી જાય, પ્રત્યક્ષ યોગમાં કામ ન કરી શકે, ન થાય, પછી ફરીથી પાછું વિજ્ઞાન માટે પ્રત્યક્ષ યોગ જોઈએ, તો પછી એ બધાને કામ કરી જાય.
એનો આધાર પ્રત્યક્ષ યોગમાં કેટલું ગ્રહણ કર્યું છે. ગ્રહણ કેટલું કર્યું છે કે નથી કર્યું, બીજું એમાં પુરસાદ કેટલો ચાલે છે ના એનો પુરસાદ. યોગમાં સુગમતા વિશેષ રહે છે, પ્રત્યક્ષ સુગમતા પણ ન જ થાય એવું કાંઈ નથી, કેમ કે પ્રત્યક્ષ યોગ મળ્યો છે, પ્રત્યક્ષ યોગે જીવ્યું છે, ગ્રહણ કર્યું છે, એનું કામ ચાલવાનું. આત્મા પ્રત્યક્ષ યોગ છે ને, એ તો જ્યાં અંદરમાં પોતાનું સુધ નથી આવતી એને હિંટ મળવા પૂરતો એને નિમિત્ત નિમિત્ત સમસ્યા છે. પછી ચારે તો સ્વયં છે થાય છે એકદમ, કેમ કે કોઈ સત્પુરુષ કોઈ મનુષ્યની સમક્ષ 24 કલાક તો બેસતા નથી, સંભવ પણ નથી, સંભવ પણ નથી. ઉદય તો બધામાં જુદા જુદા, પછી કામ કરે એને કારણે અટકેલું તો
નિયમ નથી,
પછી એનું પરોક્ષ પણ કેટલા અંતરમાં છે એના ડિસ્ટન્સ સાથે સંબંધ નથી, કે ભાઈ 50 ફૂટ દૂર છે, 50 માઇલ દૂર છે, 500 માઇલ દૂર છે, એની સાથે ને એની સાથે સંબંધ. અંદરમાં જે કામ કરવું છે એના માટેનું જે એના માટેનું જે માર્ગદર્શન છે એને મીઠ મેળા બાપુ પ્રત્યક્ષ યોગિક સમય છે. આમ તો અંદરમાં પોતાનું જ કરવાનું છે.
ગ્રહણ કેટલી તીવ્રતાપૂર્વક કર્યું છે તેના પણ વધારે ડિઝાઇન છે, એનો માપ કેવો પણ નીકળે કે ભાઈ આજે
ગ્રહણ તો શું છે? કોઈને તો તરત જ કરંટ લાગે છે, કોઈને કોઈ વિશેષ અંદરનો અવરોધ કોઈ હોય, પોતાના પરિણામો પ્રતિબંધ હોય, એ હટ્યા પછી એની વાત જે જીલાઈ છે એનો કરંટ ચાલુ થાય. બધી વખત એક સાથે સ્થિતિ નથી હોતી યોગ્યતા, યોગ્યતા યોગ્યતા સમય સમયની યોગ્યતા છે, જીવના પરિણામનું પણ સમય સમયની યોગ્યતા છે. તો જ્યારે માર્ગદર્શન પ્રત્યક્ષમાં મળે છે ત્યારે કોઈ એવા પ્રતિબંધક ભાવ અનુભવે નહીં, તરત જ ચાલુ નથી. પણ યોગ્યતાવશ તો જે પકડાણું હોય, ગ્રહણ થયો હોય, સ્વીકાર થયો હોય અને એનો એનો પ્રયાસ ચાલુ થયો તો પ્રતિબંધક ભાવ દૂર થયે પછી વિશેષપણે તીવ્રતા આવે
છે. એ વખતે એના પકડવા આવી ગયો ને કે આ મારે કશું બંધક કારણ આપી મળે છે.
અંતરખોજ અંતર અવલોકન અવરોધક પ્રતિબંધક ભાવોને બાળવાનું એક જ સાધન છે. એ સિવાય પૂર્વમાં કરેલા પ્રતિબંધક નાની પ્રતિક્રમણ કરે છે, નાની આલોચના કરે છે અને નાની પછી ત્રણ પ્રકાર દિશામાં કરે. પૂર્વે કરેલા ભાવોનું પ્રતિક્રમણ, પછી એ પ્રતિક્રમણ પશ્ચાતાપરૂપ હોય છે, એ પ્રતિક્રમણ પરિસરૂપ પરિણામોને દર્શન પરિસરૂપ હોય છે, અને વર્તમાનનું તો અવલોકનો આલોચના છે. ચાલતા થવામાં હવે માટે ત્રણ દિવસ પછકાન છે. દોષ કાઢવા માટે ત્રણ પ્રકાર છે, પ્રસિદ્ધ છે. વાત ઓછલી વિસ્તાર મુજબ અમારે જોઈને તો કઈ પ્રકાર છે દુઃખ પરિણામ તો ક્યાં ને અમારે આત્મ પરિણામ છે ગુરુ ધર્મ આત્મ પરિણામ તો શું ભાવ ચોખ્યો હું ભાવ કરીએ છે. અમારી કુછ અયોગ્યતા બી બની ચૂકી હોય, અયોગ્યતા તો વર્તમાનનું હવે બોધ મૂલ્ય પર અમારા આત્મકલ્યાણ નું હો રહા હોય તો ક્યાં કરે એ પ્રશ્ન ચાલતા હોય. લીધે ક્યાં હોના ચાહિએ તો ઉસકે લીધે જો દર્શન કરી શકા મને અપના પ્રસ્તાવ આપતા જો ભી પ્રકાર આપતા કે લીએ યોગ્યતા કે તાલમી કે લીએ એ એક સાધન છે. વર્તમાનમાં આલોચના ભવિષ્યને પ્રશ્વાસન એ ભૂતકાળ કે લીએ પ્રતિક્રમણ ઇસકો બોલતે હૈ, શતાબ્દી બોલતે હૈ, પ્રતિક્રમણ ભી બોલતે હૈ. યા અપને વર્તમાનમાં કામ નહીં હોતા હૈ તો ઇસકા ખેદ જિસકો કહેતે હૈ વો ખેદ રૂપ ભી હોતા હૈ જિસકો દર્શન કરી સજ્ઞાન કરી શકે હૈ. તો પ્રસાદ કે પ્રધાન હોતા હૈ
ખેદ છાય છે એનો પરિસર, ખેદ છાય છે એનો
પરિસર વિજ્ઞાન પરિસર માં દર્શન પરિસર માં પત્રાત ને સંપ્રસ્થા મોક્ષ ની ભૂમિકામાં આ એક પ્રકાર માંથી પસાર થાય છે. પછી જ્ઞાન દશા
પાંચસો સાડત્રીસ
વર્તમાન યથાર્થ નિમિત મિલ ગયા, યથાર્થ બોધ મિલ ગયા, યથાર્થ સંપાદ વર્તમાન ને યથાર્થ હમણાં કામ છે અમારી યોગ્યતા યોગ્યતા તો અત્યંત ગ્રહણ કરવા કે લીધે તૈયાર હોય ફિર ક્યાં નહીં અમારા પણ સારા જે પ્રકાર તો કુછ ને કુછ અયોગ્યતા મોજૂદ છે, કુછ ને કુછ રીતને અમારી અયોગ્યતા મોજૂદ હે ઇસલીએ અમારા કામ નહીં હો પા રહા હૈ. એ વાત તો પક્કી હોગી, शंका का स्थान नहीं होगा तो निश्चिंत बात है। और वो कैसे मुझे ये सवाल होता है तो उसके लिए जिसको काम नहीं होता है उसको उसका खुद होगा ही होगा। जब परिणाम की स्मृति हो तो पश्चाताप हो, लेकिन परिणाम की स्मृति में होता क्या है तो खेद होगा। उसको जो खेद होगा वो उसी को ही परेशान होगा। ज्ञान परेशान दर्शन परेशान मिटता नहीं है और दर्शन मिटता नहीं है इसके लिए उसको परेशान है। ऐसी भूमिका में हमेशा मनुष्य जीव को गुजरता है तब उनकी विशुद्धि होती है। विशुद्धि से वो आगे बढ़ने के लिए उसका ज्ञान और बुद्ध दोनों पर काम करने लगता है। वो काम करने लगता है इसको इस वक्त प्रत्येक सत्पुरुष चाहिए कोई तो वो काम चले ऐसा नहीं। जब वो बन जाएगी अयोग्यता वो ग्रहण किया है उसका बला बल वो बल नहीं आने देते थे वो आने आज आने लगे बल बात बात होती है। तो प्रत्येक तो आगे बढ़ने के लिए जो सूद मिल जाती है उस सूद के लिए सूद के लिए उनको जो मार्गदर्शन नहीं आती है अनुभव के साथ अनुभव में से अपना प्रश्न निकलता है। ये प्रश्न कहाँ से निकलते हैं तो अपने वर्तमान अनुभव में से। तो वो जो प्रश्न निकला वो अपने आवश्यकता वाला उत्तर खींच के ले आएगा। तो क्या है हमारी आवश्यकता यह है इसका नाम प्रश्न है। हमारी तो यह आवश्यकता है तो उसके सामने पूर्ति आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। ख्याल करता हूँ उसको क्या खिलखिन हो जाता है तो जो मेरा अंतकरण शुद्ध है सिद्धांत करण से मुझे आत्मकल्याण और आत्मकल्याण की करने के लिए मुझे मेरे पूर्ति सामग्री भी मिल चुकी है। अब मेरा आत्मकल्याण कौन क्या नहीं होता तो वहां टकराव जो टकराव है वो वहां होती है। उसके लिए क्या होता है जो निरपायता है खेल हो जाता है। क्या ऐसा प्रतिबंधक मेरे लिए प्रतिबंधक योग्यता में काम ऐसा जैसे कुछ बच्चा पढ़ते क्यों दर्द हो रहा है। अब एक साल का बच्चा कोई बता सकता है कि मुझे देखने में लग रहा है दर्द हो रहा है वो बात करेगा वो कैसे उसकी अभिव्यक्ति होती है तो दर्द को हमारा रोने लगता है। दूसरे को पता चल रहा है उसको कुछ नहीं रहा है कई बात करो ऐसी बात होती है कि वो दर्द है काम नहीं हो रहा है वही दर्द हो रहा है मैं तो दर्द भी वहन है और इलाज भी वहन होता है बात से कुछ करना है दर्शन परेशान है वो इसकी अयोग्यता को बताता है। अब आगे से अनुसंधान करते हैं क्योंकि वो सुधारस के विषय में लिखा था ना सुधारस के विषय में लिखा था तो स्पष्ट लिखा हो तो भी किसको समझ में आए कि जो अज्ञान की दृष्टि से सुनने रहा है उसको और उस प्रकार से वह वाचने वाले को स्पष्ट जानने का कभी भी कारण होता है। स्पष्ट लिखाने को पढ़ने वाले को कारण होता है ज्ञान का, जिसमें अज्ञान अज्ञान के रूप से उपासना की हो उसका। क्योंकि हमने तो अति स्पष्ट लिखा नहीं था, हमने तो बहुत स्पष्ट नहीं लिखा था, अभी तो एक पंक्ति में दो पंक्ति में ही बात पहुंचती थी आकर्षण करने के लिए कि बीज ज्ञान है कोई सुधारस है ऐसा करके। तो भी उनको ऐसा कुछ संभव होता है, परंतु हम तो ऐसे अनुमान करते हैं कि अति स्पष्ट लिखा हो तो भी बहुत करके समझ नहीं आ पाए, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक रूप से जिसको सत्संग की उपासना नहीं की है उसको तो समझ में नहीं आता है, या वो विपरीत समझ में आता है और फिर उसको और विकसित थोड़ा तो उसमें चल जाएगा, फिर उसको विकसित उत्पन्न होकर के सन्मार्ग की प्राप्ति में भावना होने का संभव होता है। इस पत्ते में मैंने पोस्ट कार्ड में हमें इच्छा पूर्वक स्पष्ट लिखा था, स्पष्ट मैंने सुधारस मुख के विषय वर्षा ऐसा स्पष्ट लिखा था। सहज स्वभाव से भी न अनुमानित हो ऐसा बहुत करके परमार्थ के विषय में लिखा नहीं जाता अथवा बोला नहीं जाता कि जो अपरमार्थिक परिणाम को प्राप्त हो जाए, ये हमारी स्वयं की योग्यता के विषय में लिखा है कि परमार्थ के विषय में जो कुछ भी लिखा जाता है या हमारे से बोला जाता है उसका सहज स्वभाव, उसकी सहज क्रिया ऐसी है कि किसी को अपरमार्थ रूप यानी नुकसान हो जाए ऐसा परिणाम नहीं होगा, ऐसा नहीं किसमें है ऐसा नहीं होगा। दूसरा हमारा आशय योग ज्ञान के विषय में लिखने का विशेष रूप से अत्र लिख रहे हैं। विज्ञान के विषय में जो हमारा आशय है उसको खोल करके हम बता रहे हैं। चार भेद उसका लिया है, एक जो ज्ञानी पुरुष में स्पष्ट ऐसा अपना आत्मा अपना स्वरूप कोई अपूर्व लक्षण से गुण से और वेदन से अनुभव किया है, ऐसा जो ज्ञानी है कि जिसने स्वरूप का वेदन किया है लक्षण से और प्रभाव से और वही परिणाम जिसका आत्मा का दर्शन है वो विराजमान है, ऐसे ज्ञानी पुरुष ने यदि वह सुधारस संबंधी ज्ञान दिया हो तो उसका परिणाम अगले को परमार्थ परमार्थ स्वरूप है। चार भेद लेते हैं, परमार्थ परमार्थ स्वरूप, व्यवहार परमार्थ स्वरूप, परमार्थ व्यवहार स्वरूप और व्यवहार व्यवहार स्वरूप, ऐसे चार भेद लेते हैं। निमित्त उपादान को साथ में सूक्ष्म विषय फिर से पहले के जो ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी पुरुष की परिभाषा क्या है, ज्ञानी पुरुष क्या कि जिसने अपना आत्मस्वरूप को अपूर्व लक्षण से अपूर्व गुण से और अपूर्व अनुभव से वेदन से अनुभव किया और इस परिणाम में वो विराजमान स्थिति में वो विराजमान है, ऐसा ज्ञानी पुरुष ने सुधारस संबंधी यानी बीज ज्ञान संबंधी दूसरे योग्य मुमुक्षु को ज्ञान दिया हो तो उसका फल परिणाम में नहीं है, उसका फल परमार्थ परमार्थ स्वरूप है, उसका अवश्य अवश्य कल्याण हो ही जाएगा।
वो बात निष्फल जाने वाली नहीं है। क्यों? तो ज्ञान देने वाला भी सही है, ज्ञान लेने वाला भी सही है, यथार्थ पात्रता में सही है, इसलिए वो उसका फल है वो परमार्थ परमार्थ, इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। तो उसका भी परिणाम हो जाए, अन्यथा परिणाम हो जाए, ऐसा होने वाला। क्योंकि ग्रहण करने वाला बराबर ग्रहण करता है, कहने वाला अपने अनुभव की बात खोलकर कहता है, तो फिर उसको उसमें कोई दूसरा अन्यथा परिणाम आने की गुंजाइश वहां है ही नहीं। दूसरा, जो पुरुष यह सुधारस को ही आत्मा जानता है, उससे वो ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, तो ये व्यवहार परमात्म स्वरूप है, इस भूमिका में आया हो तो वहां तो वही भूमिका ही में एकत्र है, तो वही उसका आत्मा हो गया। अभी तो भिन्नत्व तो हुआ नहीं है, और वो ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उनको, उससे ज्ञान की प्राप्ति दूसरे को हुई हो, तो ये व्यवहार परमात्म स्वरूप है। तब तक दूसरे को लागू हुए नहीं भी हो गए, ऐसी बात हो गई, उसका पूर्ण इस बात को बताने का उतना अधिकार नहीं है। वो सुधारस को ही आत्मा माना है, आत्मा तो अलग चीज
है, हाँ
ये तो विज्ञान है, तो ये योग्यता जो है ज्ञान दशा वाली योग्यता। यह ज्ञान कदापि परमार्थ परमार्थ स्वरूप ऐसा ज्ञानी ने न दिया हो, परंतु यह ज्ञानी पुरुष का सन्मार्ग सम्मुख आकर्षित हो, ऐसा जो जीव को उपदेश किया हो और जीव को ये रुचा हो, उसकी रुचि में आया हो, तो उसका ज्ञान ये परमार्थ व्यवहार स्वरूप है। परमार्थ व्यवहार स्वरूप है तो उसने ग्रहण कर दिया है, परमार्थ परमार्थ स्वरूप ऐसा ज्ञानी ने वो दिया नहीं हो, लेकिन उस विषय की परिभाषा या ग्रंथ या विषय को खोल करके, जैसे समय साल में परिशिष्ट है अमृत चंद्राचार्य जी का, विषय तो खुला है, मोक्ष लक्षण वाला भी ज्ञान का विषय तो खुला है, ऐसा कोई भी ग्रंथ में हो, और ऐसा उपदेश ज्ञानी पुरुष के सन्मार्ग सम्मुख आकर्षित कर रहे हैं, कोई बात तो है, कोई सन्मार्ग थी इसमें, ऐसा जीव को उपदेश किया हो और वो रुचिवान को अच्छा लगा, रुचि हुई हो, तो उसका यह ज्ञान परमार्थ व्यवहार स्वरूप, तो उसको आगे जा करके इसमें आगे बढ़ने का की संभावना, क्योंकि रुचा है इसमें, तो रुचि है वो अच्छी चीज है, परमार्थ विषय को रुचि हुई है वो आत्मा की योग्यता को कुछ न कुछ रूप में लाभकारक, रुचि का विषय, ज्ञान का विषय नहीं, रुचि का विषय नहीं, ऐसी योग्यता वाले जीव को लिया। और उसके सिवा शास्त्रादि के जानने वाला कोई विद्वान हो, पंडित हो, तो शास्त्र अनुकूल जानता हो, विरुद्ध विरुद्ध बात नहीं करता, ऐसा शास्त्र में कहा बताता, इसके सिवा शास्त्रादि को जानने वाला सामान्य प्रकार से मार्गानुसारी जैसी उपदेश बात करता है और वो श्रद्धा में आती है या ठीक लगती है, तो बात को अविरोध है, बात में विरोध नहीं है, तो यह व्यवहार व्यवहार स्वरूप है, यह व्यवहार है वो व्यवहार स्वरूप है, इसका कोई फल होता, से जो कहने वाला है वो ही अनजान है और लेने वाला भी अनजान है। तो बौद्धिक स्तर पर उसको सम्मत होता है कि बात ठीक है, लेकिन इसका कोई फल नहीं आता है।
नहीं देवा देवा नहीं
क्या देवा
नहीं लगभग
અત્યારે તો પંડિતોમાં આ વિજ્ઞાન નું વિશે ચાલતું, આ તો પર્ટિક્યુલર શિક્ષા છે વિશ્વ વિષય તો પંડિત મત સ્પષ્ટ કરતો નહીં હોય તો ઇસ વિષય ને પડતો નહીં, ઇસ વિષય તો સ્પષ્ટ કરતો નહીં, કરતા ભી કારણ છે
એનો અર્થ એમ છે કે વ્યવહાર વ્યવહાર ત્યાં આગળ લાગુ નથી પડતો, એ આ ચોથો પ્રકાર કીધો એ બી અત્યારે જે આપણું જે વિષય ચાલે છે વ્યવહાર વ્યવહારે લાગુ નથી પડતો એમ અને વ્યવહાર વ્યવહાર બાબત નથી કર્યા, વ્યવહાર નો વ્યવહાર નથી ને કર્યા, વ્યવહાર નો વ્યવહાર
નો વ્યવહાર સિવા શાસ્ત્રાદી કે જાણને વાળા વિષય કા જાણને વાળા સામાન્ય પ્રકાર તો માર્ગાનો સારું જેવી ઉદ્દેશ ઉદ્દેશ વાત કરે માર્ગાનો સારી કૃષ્ણ કહેતો જીસકો સિદ્ધાંત કે અંદર સે બેઠા હૈ જૈસે કરતા મતે તો તૂટે કરો એ છે મહાભજન નો હું કરું હું કરું એ જો જ્ઞાનતા એવી વાત વાત બરાબર ના લાગે એવું ના હોય વાત બરાબર લાગે તેમ છતાં એનું જે પરિણામ છે એનો વિશ્વાસ કરતા એટલે વિશ્વાસ આવે છે વાત ઠીક છે બરાબર વાત છે તો પણ એનું જે ફળ છે તે વાત એને છે કોઈ આત્મલાભ થાય એવું બનતું નથી સામાન્ય વાત થઈ ગઈ માર્ગાનું સારું જીવ હોતા ખુબ ગર્ભિત યોગ્યતા ઉમતી અસર હોતી કે માર્ગ પ્રાપ્તિ મેં ઉનકો બહુત દૂરી નહીં ફિર ભી બાહ્ય પરિસ્થિતિ દેખો તો માર્ગ પ્રાપ્તિ મેં આ ગયા છે એમ પોતા નહીં જીતું કબીર હૈ પગલે તો બહુ છે આપણે જૈન સિદ્ધાંત અખાત વ્યક્તિ બાદ મનનાર છે લીયા હૈ તું છો જીવ ને તું છો નાથ તું જેને જીવ કહે છે એ જ પરમાત્મા છો અંદરમાં તું જ પરમાત્મા છો હવે એની મતમાં એ વાત જ નથી હું તો બીજો પરમાત્મા છું બધા કે છે તું જીવ ને તું જ પરમાત્મા છો અને એમાં બધું સમાઈ ગયું એમ કહીને તો અખે જશે મને મેં પૂરી વાત કરી દીયા તું પરમાત્મા હો એસા કહેતો કે મેં તો પૂરી વાત કરી દીયા અભી કુછ કહેને કા બાકી નહીં રહેતા જ્ઞાની પુરુષ સમજ લેતા હોય કે એનું કોઈ માર્ગાનું પુરુષ માર્ગાનો સારું પુરુષ હોઈ શકતા હોય એમાં એસી વાત उनके संप्रदाय में नहीं है तो लड़ा कहां से, तो आत्मा में से वो बात आई है उनके पास। सन्मार्ग में आगे बढ़ने के लिए एकदम जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो स्पष्टता उस स्पष्टता को भर चुकी है और उनको स्पष्टता देने वाले का योग भी नहीं वर्तमान में है, फिर भी कुछ बात अनोखी आती है, अनूठी बात आती है उसके आत्मा में से, उसकी योग्यता को ज्ञानी पुरुष पकड़ते हैं आगामी सारी जीवन। इसको कोई ऐसा ही शरीर मूर्ति ज्ञानी पुरुष हो जाएगा अपना काम कर बहुत दूर वर्तमान में तो अन्य मत में होता है ऐसी स्थिति
यानी मैं ज्ञान का विषय
ज्ञान की गहराई का विषय ऊपर ऊपर की बातों का ये विषय ज्ञानी के ज्ञान उनके भावों से उनकी बहुत गर्भित योग्यता को पकड़ लेता है, गर्भित योग्यता को पकड़ता है, क्योंकि वर्तमान में इतनी स्थिति नहीं दिखने यहां से वो उठ सकते हैं कि मार्ग का ज्ञान और इस विषय में और सूक्ष्म ऐसे मार्गानुसारी जीवों के वचन पढ़ते ही उनको मालूम पड़ जाता है मार्ग ऐसा नहीं होने पर भी सामने नहीं होने पर भी
बंधन योग्य मार्ग अनुसार ही बंधन योग्य है,
बंधन का समाधान नहीं रहता, बंधन का क्या कारण है सामान्य व्यवहार शिष्टाचार करते बंधन का समाधान नहीं रहता। उनमें तो धर्म को जहां धर्म है धर्म नहीं है हमारे अंदर धर्म से क्या धर्म प्रगट नहीं है वहां तो साध प्रगट तो धर्म नहीं है मार्गानुसार में प्रगट धर्म तो प्रगट नहीं हुआ है आगे होगा और कुछ कोई बात होगी अभी तो नहीं है व्यवहार तो वर्तमान में होता है
नजीक मार्ग में नजीक मार्ग के सुंदर जैसे
કોઈ
જૈન સિદ્ધાંત ની વાત આત્મા માંથી કરે છે શાસ્ત્ર આદિ માંથી કરે છે વિપરીત વાત નથી કરતા છતાં પણ વ્યવહાર વ્યવહાર સ્વરૂપ એનું કોઈ ખાસ ફળ નથી
બધી દેવતામાં આગલા ભાવમાં એમને કઈ સાંભળ્યું અને એમને પાછળ
કોઈ કારણ તો એવું હોવું હોય શકે કોઈ કારણ તો એવું હોય શકે રૂચિ જીવ હોય એવી વિશિષ્ટ વાત હોય એ ખૂબ રૂચિ જીવ હોય એના સંસ્કાર વશ વાત નીકળી જાય એવા સંસ્કાર સુગમ પણ છે સુગમ રૂપ છે સમજને યોગ્ય એસે ચાર પ્રકાર હોતા એક પરમાર્થ પરમાર્થ સ્વરૂપ એવો નિકટ મોક્ષ કા ઉપાય છે પરમાર્થ પરમાર્થ સ્વરૂપ હૈ ઉસે સન્માર્ગ મેં બહોત સમીપ મેં આ ગયા હૈ નિકટ મોક્ષ કા ઉપાય હૈ પરમાર્થ વ્યવહાર રૂપ એ અનંતર પરંતર સંબંધો મોક્ષ કા ઉપાય હૈ નિકટ નહીં હૈ લેકિન ઉસકો પરંપરા મેં થોડી દેર લગ કરકે લેકિન વો લાઈન ઉસસે ઠીક હૈ બરાબર વ્યવહાર પરમાર્થ સ્વરૂપ એ બહુત કાળ છે કોઈ પ્રકારે ભી મોક્ષ કા સાધનભૂત સાધન કા કારણભૂત હોને કા ઉપાય હૈ સાધન કા કારણભૂત મોક્ષ કે સાધન કે કારણ
बन जाता है वो तीसरा प्रकार भी है, वो सूक्ष्म कार्य सूक्ष्म परमार्थिक उपदेश की रुचि हुई है तो उस रुचि के वशात उनके आगे जाकर के मोक्ष का साधन का कारण हो तो वो बात बन सकती है, मोक्ष का कोई साधन है इसका कारण हो तो वो बात बन सकती है। तो व्यवहार वाला स्वरूप का फल आत्म प्रत्यय ही आत्मा में उसका कुछ लाभ होता तो दिल में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, पहले वाला तो बहुत निकट है, दूसरे वाला थोड़ा दूर है, तीसरे वाले को कभी लाभ होने के चांस साधन बन सकता है कारण बन सकता है कुछ नहीं, चौथे का कोई जगह
नहीं।
यहाँ इतना मतलब सोभा मैंने लिखा है जी, तो साइला में वो विज्ञान वाली बात बहुत चर्चित थी, विज्ञान मिल जाए विज्ञान मिल जाए यहाँ से मिल जाए वहाँ से मिल जाए ऐसे मिल जाए वैसे मिल जाए, एक विज्ञानी है तो हमने विज्ञान दिया है विज्ञानी ने विज्ञान दिया है ऐसे बहुत चलती है। उन्होंने चार भेद बताया, तो चार प्रकार है तुम समझ ले रहा
बराबर से यानी अनुसंधान हो चार
स्पष्टीकरण दिया है। यह बात अभी भी आगे भी कोई प्रसंग वसात विशेष रूप से लिखेंगे
ठीक
है, तो खास नहीं आई ये बात, 751 में तो बहुत संक्षेप में आया है, इतना विशेष रूप से तो कहीं ग्रंथ में नहीं मिलता है, वहां कुछ संक्षेप है, चार शब्द लिखे हैं, परमार्थ के स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति विज्ञान का स्वरूप उतना ही बहुत संक्षेप में वो बात आगे कोई प्रसंग विशेष प्रसंग विशेष रूप से लिखेंगे, इसलिए विशेष रूप से समझ में आएगी, परंतु इतनी संक्षिप्तता से विशेष समझ में नहीं आए तो उलझन में पड़ना नहीं
कंक्लूड है।
विशेष रूप से ये बात समझ में हमारा योग है आपको आगे जाकर के स्पष्ट कर देंगे। लक्षण से गुण से और वेदन से जिसने आत्मस्वरूप जाना है
जी
उसे उसको ध्यान का यह एक उपाय है कि जिससे आत्म प्रदेश की स्थिरता होती है और परिणाम भी स्थिर होता है, योग भी स्थिर होता है परिणाम भी स्थिर होता है। ध्यान संस्था किसको, जिसको आत्मज्ञान है उसको, आत्मज्ञान मैंने क्या लक्षण से गुण से और विघन से आत्म स्वरूप जाना,
लक्षण से
उपयोग लक्षण से सदा सनातन स्फूर्त ऐसा आत्मा
जी
ऐसा ये जो योग का विपरीत परिणाम है वो अनंतानुबंधी में जो योगाश्रम होता है
उस प्रकार का फर्क पड़ जाता है। एकत्वपूर्ण तो छुट जाए, सब योग गुण का विपर्याय वो है जो कंपन का विपर्याय है, आत्मप्रदेश के कंपन का जो विपर्याय है उसमें भी फर्क पड़ता है। जैसे कि मिथ्यात्व रीति प्रमाद कषाय योग बंद हेतव, स्वामी का सूत्र है, बंद हेतु को या आश्रय को, अधिकार आश्रय का चलता है, आश्रय अधिकार का पहला सूत्र है मोक्ष शास्त्र का। तो आश्रय कौन है कि जो बंध का हेतु है, तो आश्रय के पांच भेद लिए, मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कषाय योग। इसमें मिथ्यात्व गया जिसका, तो चार राव चारों की जाति में फर्क है, मिथ्यात्व सहित भी वो चार थे और मिथ्यात्व रहित भी वो चार रहे, उसमें फर्क पड़ता है चारों में। ठीक है,
इतने की भी इतने योगना कंपन में फर्क पड़ जाए,
बहुत सूक्ष्म विषय से फर्क पड़ जाए। इन कारण के ये स्वरूप स्थिरता अभी अनुभव उपयोग जो स्थिर थो थंभी गो ये ध्यानस्थ अवस्था है, स्वरूपाचरण ध्यानस्थ चारित्र गुण में पड़ जाए तो चारित्र शुद्धि पर थी, प्रधान ने तो पूरी शुद्धि थी, ज्ञान शुद्धि चारित्र शुद्धि, सेना आश्रय थे कि अयोगी केवल स्वभाव से एना आश्रय थे, असंग केवल केवल असंग स्वभाव से आश्रय थे। तो योग नो जो विकार हो ये विकार फर्क पड़े, युगाश्रम फर्क पड़े, एवं युगाश्रम मिथ्यात्व अवस्था में थे, एवं युगाश्रम मिथ्यात्व गया पीछे एवं एवं
ना थे चेपता चेपता ऊँचू
आम खबर न पड़े कोई नहीं बाहर से क्या खबर न पड़े, क्योंकि तेरवा गुण स्थान सुधी युगाश्रम थे, चौद में जाए युगाश्रम
જાય વખતે ખૂબ કંપન થઈને પછી જાય છે,
પણ બાકી રહ્યું છે પૂર્વ નિબંધન છે આશ્રવિત કરવું કેટલું બાકી રહ્યું છે એમાં બધા એક સરખો પ્રકારનો છે, જેમ કે કોઈ કેવળી સમુદઘાત કરે છે બરાબર, બધા કેવળીને થતો નથી, कोई केवल ज्ञानी ऐसा है कि उसके पूर्व निबंधन किए हुए कर्म ऐसा है कि जिनकी स्थिति बहुत है और आयु उतना है नहीं और आगे कोई नया भव है नहीं, नया भव का बंधन पड़ा नहीं, नया आयु बनता नहीं उसको, हाँ तो उसको अगले भाव में भोगे तो उसको तो नया बंधन ही नहीं होता, ऐसे सब प्रकार के जो विभाव है वो विकार क्या है उसके तो नाश भी है, तो पूर्व जो रहे हैं उसका क्या करें, उसकी स्थिति लंबी है तो हाँ પણ બધા તો એવું થતું નથી, એસા કોઈ સિદ્ધાંત નહીં, કિસી કો હોય કિસી કો નહીં, સભી કે ભૂતકાળ એક સે નહીં હૈ, સભી કે ભવિષ્ય ફિક્સ હો ગયા લેકિન સભી કે ભૂતકાળ તો એક સે હૈ નહીં, યે અપને કો ભી ક્યા હૈ, મોક્ષ સબ અમોક્ષ હૈ માન લીજીએ, તો ઉસમે ભી સબકે ભૂતકાળ તો એક સે હૈ નહીં, તો સબકે પૂર્વકર્મ ભી એક સે નહીં હૈ, તો સબકે વર્તમાન યોગ પણ એક સે નહીં હૈ, हरेक के अलग अलग है। तो ज्ञानी जो होते हैं वो उस बात को अच्छी तरह समझते हैं, ये जीव कहाँ खड़ा है और उसको कैसे उठाना है, तो दूसरे का काम नहीं है, क्योंकि ज्ञानी इतने ऊपर बैठे हैं, जैसे कि आप एक श्रवण बेलगोला जैसी छोटी सी टेकरी है उस पर बैठे हैं, तो नीचे चढ़ने वाले बहुत से लोग हैं, तो आप सबको जानते हैं कि ये 5 पगथिया चढ़ा है, वो 50 पगथिया पर ऊपर खड़ा है, तो वो 200 पगथिया चढ़ गया है, वो तो बहुत समय पा गया है,
ऊपर बैठे बैठे वाला सब नीचे को नीचे वाले को देख लेता है कि कौन कितना आगे आया है, कौन कितना खड़ा है, कौन कितना चलता है या नहीं चलता है। ऐसे ज्ञानी को ऊपर बैठे हैं तो नीचे वाले की योग्यता को वो समझ सकते हैं कि कौन कितनी योग्यता में है और उसको क्या जरूरत है अभी। तो व्यक्तिगत रूप से सभी को एक उपदेश होने देते हैं, समष्टिगत में तो दूसरा इलाज नहीं है, व्याख्या नहीं कि आवे जिसको जितना लेना हो ले, नहीं लेना हो तो नहीं ले, या उल्टा पढ़ना हो तो उल्टा भी पढ़े, क्योंकि तो उसमें तो दूसरा उपाय नहीं है कि एक एक को संबोधन करें एक घंटे में। इसमें व्यक्तिगत परिचय बोलता है, जैसे कृपाल देव का उदय ऐसा है, एक एक का व्यक्तिगत परिचय था तो हरेक को अलग अलग बात कहेंगे। ये तो हमने गुरुदेव का भी देखा है, एक ही प्रश्न का एक को अलग उत्तर दे दूसरे को अलग उत्तर दे, प्रश्न एक ही हो दोनों को उत्तर नहीं मिले, उसका कारण क्या है? कि पूछने वाले को समझते हैं कि उसको अभी क्या की जरूरत, क्या क्या बोलना चाहिए।
योगना कंपन बखत है ये तो अंदर ना खबर पड़ी, कोई बाहरी चीज में कोई होना का
कंपन है क्या? वाइब्रेशन
कंपन मैंने परिस्पंदन हिलना
फिजिकली
फिर आप फिजिकली इनसाइड कंपन किसी को कंपन
वो कैसे होता है?
वो एक प्रकार का विभाव है, योग गुण का शुद्ध परिणाम नहीं होने से, जैसे हमारी आत्मा है तो मन से वचन से और काया से संबंधित जुड़ी हुई है। योग में ये जो योग टू ज्वाइन यूज धातु है तो संयोग जो है, जैसे हमारे एक प्रेशर चलता है तो दबाते हैं इसको, तो आप ज्ञान को तो स्पर्श नहीं कर सकता लेकिन हमको दर्द क्या होता है? काय योग है, हमारी आत्मा को काय योग है, जिस परिणाम से हमने जो हम इस काया के साथ संयोग में रहे हैं उस परिणाम की अयोग्यता को हमने जहां तक नहीं मिटाई है वहां तक यह सब बना रहता है। मनुष्य का संचय काय से योग में संयोग में रहना, संयोग में अच्छी तरह से योग होना, साथ में हम यहाँ बैठे तो हमारा मन वचन काया इधर है, बात कर रहे हैं तो मन वचन काया इधर साथ में ही है, तो संयोग स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइप का है, खास प्रकार का है संयोग। ऐसा नहीं है कि मकान जैसा संयोग, मकान इधर रह जाएगा हम इधर चले जाएंगे, ऐसा संयोग नहीं। मकान का भी संयोग है, देह का भी संयोग है, लेकिन इसको योग कहते हैं, मन वचन काय योग। तो खास प्रकार का उसका जो संयोग है उसमें ऐसा क्यों हुआ कि हमारे बाह्य परिणाम से ऐसा हुआ है तो अंतर्मुख परिणाम से उसकी शुद्धि होती है। ये अशुद्धि का फल है, अशुद्धि का रिजल्ट है, ओरिएंटेड पोजिशन अशुद्धि की है, हमारे अशुद्ध परिणाम जो हुए इससे एक परिस्थिति बन चुकी है हमारी मन वचन काया के योग की। तो जितनी जितनी शुद्धि होती जाएगी उतना उतना फर्क उसमें पड़ता जाएगा, ऐसा है।
वर्तमान में योगनी कंपन चालू ने चालू
चालू
मन वचन काया ने साथ जोड़ायेला है,
योगना
प्रश्न एम आए कि मुख्यत्व प्रमाद कशाय नहीं, ये तो कर्म बंद कारण है, पर योग ने कशा मन के
आश्रम का कारण है, योग भी आश्रम का कारण है, ये योगाश्रम कहते हैं 13वें गुणस्थान में प्रमाद नहीं कषाय नहीं आश्रय कुछ का है, योग
आश्रय
है स्वतंत्र क्या होता है कि कुछ विभाव से ये बात हो गई है, जैसे किसी को कंप भाव होता है, कंप भाव नाम का भाव होता है, उसके आपको ऐसे हिलते ही रहेंगे उसकी इच्छा काम में नहीं आएगी, उसको तो इच्छा हुआ है कि मेरा कंपन नहीं हो, मेरा कंपन नहीं हो, इसकी ऐसी इसकी इच्छा है, फिर भी वो कंपते ही रहेंगे। ऐसे ये जो कंपन है वो विभाव से पैदा हुआ है तो जहां तक विभाव की शुद्धि नहीं होगी वहां से वो कंपन चालू रहेगा।
ये तो समझी सकते हैं। हाँ, तो तीन गुण चाल के विभाव छे नहीं।
हाँ, विभाव नहीं है लेकिन विभाव की योग आश्रम की जितनी असर रह गई है इसलिए वहां कहते हैं कि शुद्धि तो हुई है लेकिन अनुजीवी गुणों की भी है। जो शुद्धि पूर्ण शुद्धि हुई है वो अनुजीवी गुणों की हुई है, प्रतिजीवी गुणों की नहीं हुई है। तो प्रतिजीवी गुणों में जो विभाव रहा ये भी एक प्रकार की अशुद्धि है जिसको असिद्धत्व भी हम कह सकते हैं। जैसे विश्व में जीव के दो ही विभाग हम करें तो दो विभाग कैसे हो सकते हैं, टू क्लास ओनली, दो वर्ग करें तो एक संसारी और एक सिद्ध, दो ही विभाग है। तो जो सिद्ध के सिवा के जीव हो सब संसारी है, वो तो 14वें स्थान तक संसारी जीव है, सिद्धालय में गए हुए सिद्ध है, बाकी सब संसारी है, ऐसी बात है।
એમ વિચાર કરીએ કે મનનો પવન તૂટી ગયો છે તેમને ગુણ થાય, વચન તો એમ પવન તો એમ રહીએ તો પવન પણ તું કાયા નો પવન રહ્યો, એમાં એમાં પરિણામ કોઈ વૈભાવિક પરિણામ નથી,
અનુજીવી ગુણો શુદ્ધ છે। અમારો જે પ્રશ્ન છે ને એ અનુજીવી ગુણો નો છે, અનુજીવી ગુણો શુદ્ધ પરિણામ ગયા છે, પ્રતિજીવી ગુણો હજી શુદ્ધ નથી ગયા, માટે એનું વિપરિણામ પણ ચાલુ છે અને તે યોગાસન રૂપે કામ કરી રહ્યું છે।
નહીં,
કંપન છે શુદ્ધિ આપે નહીં, કંપન છે નયા આશ્રમ હોતા, નયા આશ્રમ વિભાવ છે, વિભાવ નહીં હોતા, સ્વભાવ સે વિભાવ કરેગા, વિભાવ સે તો વિભાવ નહીં હોગા, એ તો જ વિભાવ હૈ, કંપન હૈ કોઈ જીવ કા સ્વભાવ નહીં હૈ, તો વિભાવ હૈ, જીવ કે પ્રવેશ કા કંપન હૈ ઇસકા સ્વભાવ નહીં હૈ, એ તો વિભાવ હૈ, તો વિભાવ સે તો આશ્રમ હોગા, વિભાવ સે સિદ્ધિ નહીં।
ભાઈ, તારતમ્યતામાં ચોથા ગુણ સ્થાને અનંતમાં જો યોગ હતું
સદગુરુદેવનો જય શ્રીમૂર્તિ ભગવતી માતાનો જય।